सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् निट्ठव्यट्टकम् वीरणम् यूनसौवट्टम् अनुभागस्य विहतिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति संबंधी है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 104 पर आ गए हैं। यहाँ अपना विषय भुजगार संबंधी चल रहा है और उसमें अभी हम क्षेत्रानुगम स्पर्शनानुगम देख रहे थे और स्पर्शनानुगम का हम विशेषार्थ देख रहे हैं 104 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। देखो, आदेश से नरक गति में सब विभक्ति वाले नारकियों ने मारणांतिक और उपपाद के द्वारा अतीत काल में कुछ कम 6/14 राजु प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। नरक में उत्पन्न होने वाले और नरक में से मारणांतिक करने वाले और शेष संभव पद का अर्थ क्या होता है? स्वस्थान है, विहारवत उनमें नहीं होता, वेदना कषाय समुद्घात वगैरह। अतीत काल में तथा संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यानी अतीत काल में अन्य संभव पदों के द्वारा लोक का असंख्यात भाग और वर्तमान काल में भी यदि मारणांतिक उपपाद लेते हैं तो भी वो लोक का असंख्यात भाग ही होगा वर्तमान में। क्यों? वर्तमान में एट ए टाइम करने वाले, नरक में उपपाद करने वाले, नरक में से करने वाले, वो तो जीव कम है, असंख्यात में हो गए। अतीत काल की अपेक्षा कहीं ना कहीं से वो गया है, इसलिए वो पूरा 6 राजु देखते हैं। पहले नरक में संभव सभी पदों के द्वारा लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। दूसरे से 7वें नरक तक सभी विभक्ति वाले नारकियों ने मारणांतिक और उपपाद पद के द्वारा अतीत काल में दूसरे नरक में कुछ कम 1/14, तीसरे में कुछ कम 2/14, चौथे में कुछ कम 3/14, पांचवे में कुछ कम 4/14, छठे में कुछ कम 5/14 और 7वें में कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा संभव शेष पदों के द्वारा अतीत काल में भी जो अन्य मारणांतिक और उपवाद को छोड़कर अगर अन्य पद देखते हैं अतीत में भी तो भी लोक का असंख्यात भाग है और संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान का अगर मारणांतिक और उपवाद लेते हैं तो भी वो भी लोक का असंख्यात भाग स्पर्शन किया है। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब मनुष्यों में तीनों विभक्ति वाले जीवों ने मारणांतिक और उपपाद पद के द्वारा अतीत काल में सर्वलोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि मरकर सर्वत्र जाते और कहीं से भी मरकर मनुष्य तिर्यंचों में आ सकते हैं। और संभव शेष पदों के द्वारा अतीत काल में तथा संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यातवे भाग का स्पर्शन किया है। ये मारणांतिक और उपपाद को छोड़ देंगे तो लोक का असंख्यात भाग होता है। सामान्य देवों में तीनों विभक्ति वाले जीवों ने विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय और विक्रिया पद के द्वारा अतीत काल में कुछ कुछ के ऊपर कुछ आया है। कुछ कम 8/14 राजू उस क्षेत्र का स्पर्शन किया है और मारणांतिक पद के द्वारा अतीत काल में कुछ कम 9/14 राजू क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा संभव पदों के द्वारा वर्तमान काल में और स्वस्थान पद के द्वारा अतीत काल में, यानी उनका अपना रहने का ठिकाना लोक के असंख्यात वे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों में अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। ओघ से सब लोक प्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। ओघ में तो पूरा लोक होता ही है क्योंकि ओघ की अपेक्षा ने सभी जीवों को हमने दी है बात एक साथ। इस प्रकार इस स्पर्शन को ध्यान में रखकर भुजगार आदि पदों की अपेक्षा ओघ से वो चारों गतियों में स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। अन्य मार्गनाओं में भी अपना अपना स्पर्शन जानकर जिस पद की अपेक्षा जो स्पर्शन संभव हो उसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। अब कालानुगम देखेंगे। ये जो कालानुगम कहा है वो नाना जीवों की अपेक्षा है क्योंकि एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था पहले। भुजगार का जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। अवस्थित का भी जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त किसमें? मिथ्या दृष्टि में। और सम्यक दृष्टि में तो ये लंबा काल हमने घटित किया था। और अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है क्षपणा में, क्षपक श्रेणी में, चारित्र मुखी क्षपणा में। अन्यथा सर्वत्र एक समय घटित होता है एक जीव की अपेक्षा। यहाँ हम नाना जीवों की अपेक्षा घटित करेंगे। अब यह अनुगम का नंबर कौन सा है? हाँ, 10 नंबर का यह अनुगम नंबर 10। नाना जीवों की अपेक्षा काल देखेंगे हम। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय की तीनों विभक्तियों का काल सर्वदा है क्योंकि ये तो हमेशा ही पाए जाते हैं। उसमें अनंत जी होते हैं वो भी हमने देखा था। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। अब आदेश से नारकियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति का काल सर्वदा है। अल्पतर विभक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग है। देखो अल्पतर विभक्ति तो एक समय तक ही हो सकती है नारकियों में, अधिक नहीं क्योंकि यहाँ क्षपणा नहीं होती है। तो किसी एक जीव ने अल्पतर किया, उसके पश्चात दूसरे ने किया, उसके पश्चात तीसरे ने किया, ऐसे लगातार कितना होगा? तो आवली के असंख्यातवे भाग। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय लिए तिर्यंच में, वहां तो सभी तिर्यंच लिए थे तो एक दिव्य में अनंत घटित होते तो वहां तो पॉसिबल थी वो बात। सामान्य मनुष्य अल्पतर के बाद चल रही ना, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यातवा भाग है। सामान्य देव और भुवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए।
यहाँ पे ये भुजागार का काल सर्वदा लिया है और हमने भुजागार का अंतर देखा था, वो असंख्यात लोक प्रमाण देखा था।
ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। हमने जो एक जीव की अपेक्षा अंतर देखा था, हाँ। याद है ना, निकालो एक जीव की अपेक्षा अंतर। हम 105 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं अभी, परंतु हमें एक जीव की अपेक्षा भुजगार काल होते 95 के आसपास से मिलेगा। भुजगार की बात चल रही ना, काल नहीं, हमको अंतर चाहिए ना। 99 आदेश से 97 पर है। नारकियों में कुछ कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण लिया था, आपको क्या याद है? वो
पूजागर का हमने जो काल देखा था अंतर, असंख्यात लोक प्रमाण
देखा, असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट का देखा होगा, आपको भुजगार की बात नहीं याद है?
हाँ, उत्कृष्ट का देखा,
उत्कृष्ट का अंतर देखा था। उत्कृष्ट अलग बात है और भुजगार अलग है, उससे बढ़कर बांधना उसको भुजगार कहेंगे और सबसे टॉप मोस्ट बांधना उसको उत्कृष्ट कहेंगे। अनुभाग विभक्ति का अंतर वो पहले निकालेंगे, उत्कृष्ट उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर है ना, 85 में देखो, ये आपको याद था, 131 नंबर का पॉइंट, यह अनुभाग विभक्ति में उत्कृष्ट का अंतर देख रहे हैं हम। देखो तीसरी लाइन में, ये दूसरी से शुरू था, मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है, जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी कहते ना वो भी। ये कौन सी बात चल रही है, अनेक जीवों की अपेक्षा चल रही थी ना बात, नाना जीवों की अपेक्षा ही बात चल रही नहीं यहाँ पर। नाना जीवों की अपेक्षा ही बात चल रही थी और उत्कृष्ट अनुभाग वाली बात चल रही थी, तो कोई जीव उत्कृष्ट अनुभाग नहीं करेगा तो की बात है।
नाना जीव की, अच्छा एक जीव की अपेक्षा,
एक जीव की अपेक्षा तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा था, उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, एक इंद्रियों में चला गया और फिर दोबारा पंचेंद्रिय में आएगा तो उत्कृष्ट बांधेगा, तो एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा था।
नारकी में अपनी अपनी स्थिति प्रमाण,
अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, परंतु यहाँ उत्कृष्ट का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण देखा था। यहाँ बात उत्कृष्ट की नहीं हो रही, भुजगार का अर्थ है कितनी भी क्यों न हो, अनुत्कृष्ट में ही थोड़ा अनुत्कृष्ट है, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़कर बांधेंगे तो उसको भुजगार कहेंगे। तो यहाँ वही बता रहे, देखो फिर से, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा गुजगार और अवस्थित सर्वदा है कहा, उत्कृष्ट सर्वदा ऐसा नहीं कहा था, उत्कृष्ट में तो कभी कभी इतना अंतर भी पड़ सकता है, यहाँ भुजगार की बात चल रही, तो कोई ना कोई जीव भुजगार करने वाले होगी ना, हमने देखा था वो जीव भी असंख्यात है और वो हमेशा ही पाए जाएंगे, अवस्थित वाले भी हमेशा रहेंगे, परंतु अल्पतर वाले लगातार, अल्पतर एक ही समय के लिए होता है, अवस्थित और भुजगार तो अंतर्मूर्त तक हो सकते हैं, तो कोई ना कोई जो करने वाले होंगे ही। अब अल्पतर कब करते हैं, समय तो प्राप्ति में, अनंतानबंदी की विषय योजना में, तो हमें नाना जीव की अपेक्षा जब बात करनी है तो लगातार हर समय होने चाहिए, तो ऐसे कितने जीव कर सकते, तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, एक जीव के लिए एक समय, तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव कंटिन्यूअस में आएंगे तो उतने ही समय लगेंगे उनके। ये अल्पतर की बात है, समझ में आई बात? नहीं, यहाँ हम जो ढूंढ रहे थे उत्कृष्ट का अंतर, उनको जो असंख्यात लोक प्रमाण लगता था, हाँ, आप पेज पर 44 पर बता रहे हैं, हाँ, वो एक जीव की अपेक्षा असंख्यात जीवों की अपेक्षा हमने नाना जीवों की अपेक्षा हमने असंख्यात लोग देखा उत्कृष्ट का, और यहाँ बात हो रही है भुजगार का, भुजगार यानी जो है उससे बढ़कर बांधना उसको भुजगार कहेंगे, तो वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे, भुजगार करने वाले नारकी हमेशा ही होंगे, अवस्थित वाले भी हमेशा ही होंगे, अल्पतर हो करने वाले उसमें तो अंत काल की बात चल रही ना, एक समय के लिए किसी ने किया, एक ने या अधिक जीवों ने, फिर दूसरे समय में किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि अनुभाग कांडक भी होते तो बीच बीच में अंतर्मूर्त चला जाता है। तो यहाँ एक समय का काल हुआ और लगातार कोई करे तो आवली के असंख्यात विभाग। 105 पर पढ़ रहे अभी तीसरी लाइन में, इसी प्रकार सब नार की सब पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य मनुष्य, क्योंकि अपर्याप्तों को लिए बिना ये आवली का असंख्यात भाग कैसे घटित होगा, वो मूल में असंख्यात होने चाहिए। हाँ, सामान्य देव और भुवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। ये भुवनवासी से सहस्रार तक ही क्यों लिया? उसके ऊपर भुजगार नहीं है, भुजगार नहीं होता, जो है उससे बढ़कर नहीं बनता। इसलिए जो कथन है ना कि भुजगार और अवस्थित सर्वदा होते हैं, ये कथन तथा अल्पतर में एक समय से लेकर वो आवली के असंख्यात भाग, ये भी कथन इन सभी मार्गणाओं में लागू होगा। कौन कौन सी मार्गणा? अभी जो हम देख रहे हैं कि सभी नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। ये गतियों में यहाँ बता रहे हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जो हमने ओघ में भी देखा था, एक जीव की अपेक्षा देखा था, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा? सपना में, चारित्रमौखिक सपना में। अब नाना जीवों की अपेक्षा लेना है तो नाना जीव चारित्रमौखिक सपना करेंगे एक के बाद एक, तो भी कितने करेंगे? संख्यात ही करेंगे, तो संख्यात अंतर्मूर्त को भी अंतर्मूर्त ही कहेंगे। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त घटित होता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियो में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनीय की भुजगार और अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यातवे, स के ऊपर बिंदी लगाना, असंख्यातवे भाग है। ऐसा क्यों कहा भानुबेन? सांतर मार्गणा है और ये मार्गणा का काल बताया है। मार्गणा का काल वो जघन्य एक समय नहीं हो सकता है, परंतु मनुष्य अपर्याप्तकों में जघन्य काल बताना था। मनुष्य अपर्याप्त अवस्था अंतर्मूर्त तक तो रहेगी ही, अभी यहाँ तो नाना जीव ले रहे हम, तो यहाँ किसी ने भुजगार किया, किसी ने अवस्थित रखा और एक समय के बाद पलटकर अन्य कुछ हुआ तो एक समय घटित होगा, क्योंकि ये मार्गणा ऐसी है उसमें एक भी जीव हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग है, क्योंकि भुजगार का कंटिन्यूअस काल कितना हो सकता है? अंतर्मूर्त। और अवस्थित का भी अंतर्मूर्त, एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो वहां भी पल्ले के असंख्या सॉरी आवली के असंख्यात विभाग के लिए पल्ले का असंख्यात भाग काल होगा और वो मार्गणा का भी काल है।
क्या जगन्य काल एक समय तो कोई जीव आया,
कोई जीव आया
तब उसमें अंत में जाके एक समय के लिए पूजा करके और मार्गणा बदल गई?
एक ने या अनेक जीवों ने एक समय के लिए भुजगार किया, बाद में अवस्थित हो गए।
अच्छा, एक समय के लिए
एक समय के लिए किसी ने किया ही नहीं भुजगार, वो तो अंतर में आएगा, अंतर कितना हो सकता है? यहाँ तो हम काल देख रहे हैं, यानी एक समय भुजगार करने के बाद अंतर पड़ा, कितना पड़ा वो हम उसको अभी नहीं सोचेंगे। तो कितने समय तक भुजगार रहा नाना जीवन की अपेक्षा? एक समय तक। और किसी का वो लगातार चलता रहा अंतर्मूर्त तक, एक जीव के लिए, जैसे एक या अनेक जीव अंतर्मूर्त तक करेंगे, बाद में दूसरा जीव आया, बाद में तीसरा आया, तो पल्ले का असंख्यात भाग होगा। हाँ कंटिन्यूस आने वाले जीव, हाँ अंतर पड़ता है, अंतर पड़ता है। अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग है। जहाँ एक समय घटित होता है वहाँ आवली का असंख्यात भाग लेना, जहाँ अंतर्मूर्त पॉसिबल है उत्कृष्ट के लिए तो वहाँ पल्ले का असंख्यात भाग होता है। आनंद स्वर्ग से लेकर अभी ऊपर भुजगार तो होगा ही नहीं, अपराजित विमान तक के देवों में सर्वार सिद्धि को इसलिए छोड़ा वे संख्यात है। अल्पतर और अवस्थित विभक्ति का भंग नारकियों के समान है, यानी अवस्थित के लिए क्या कहेंगे सर्वदा है, और अल्पतर के लिए क्या कहेंगे जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली का संख्यात भाग। नाना जीव है यहाँ पर। सर्वार्थ सिद्धि में अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि वहां जीव ही संख्यात होते हैं, अल्पतर करने वाले भी संख्यात हो गए और लगातार करने वाले भी उससे भी कम संख्यात हो गए। अवस्थित विभक्ति का काल सर्वदा है। इस प्रकार कालानुगम को जानकर उसे अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए। इस बार उन्होंने सभी मार्गणाओं में घटित करके नहीं बताया है, कहते वो जानकर करना आप, केवल गति मार्गणा में उन्होंने चार प्रकार के जीवों में घटित करके बताया। विशेषार्थ आदेश से सभी गतियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले जीव तो सर्वदा पाए जाते हैं। सभी गतियों में केवल मनुष्य अपर्याप्तकों में इन दोनों विभक्ति वाले नाना जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि यह सांतर मार्गणा है और इसका उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। परंतु अल्पतर विभक्ति वाले नाना जीवों का काल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से आवली का असंख्यातवा भाग होता है, अर्थात किसी भी गति में अल्पतर विभक्ति वाले जीव कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग काल तक ही पाए जाते हैं। उसके पश्चात कुछ काल ऐसा आ जाता है जिसमें एक भी अल्पतर विभक्ति वाला जीव नहीं होता, यानी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ जाता है। मात्र आनंद से लेकर अपराजित तक के देवों में भुजगार विभक्ति नहीं होती, शेष दो होती है, इसलिए उनमें भुजगार के सिवा शेष दो का काल कहा है। तथा सर्वार्थ सिद्धि में अल्पतर विभक्ति वालों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सामान्य तिर्यंचों में अल्पतर विभक्ति वाले भी लगाया, यानी उनमें भी भुजगार और अवस्थित तो सर्वदा होते ही है, अल्पतर वाले भी सर्वदा होते हैं। इसलिए इनमें तीनों का काल सर्वदा कहा है और इसी अपेक्षा से ओघ की अपेक्षा भी तीनों का काल सर्वदा कहा जाता है। अब जिन जिन मार्गणाओं में ये एकेंद्रीय निगोद वगैरह इंक्लूडेड है उनमें वो तीनों का सर्वदा कहेंगे, अन्यत्र जैसे अभी हमने घटित किया है वैसे मार्गणाओं में होगा वो बात। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम समाप्त तो हुआ। अब अंतरानुगम देखेंगे। अभी 10 नंबर का हुआ था ना अपना, अब अनुगम नंबर 11 अंतरानुगम। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की तीनों विभक्तियों का अंतर काल नहीं है, क्योंकि काल में हमने सर्वदा काल देखा था, जिसका सर्वदा काल होता है उसका अंतर नहीं होता। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में, चो करना, तिर्यंचों में जानना चाहिए। और कहां कहां ऐसा होगा? वनस्पति कायिक में होगा, निगोद में होगा, फिर अन्य जो मार्गना है ना, अचक्षु दर्शन वालों में होगा, तो यहां वो सर्वदा पाए जाएंगे। आदेश से नारकियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था वो सर्वदा होते हैं। अल्पतर का काल हमने देखा था, काल कितना देखा था? जघन्य एक समय, और आवली का, आवली का संख्या था। अब यहाँ अंतर देख रहे हैं, अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। ये नाना जीवों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, यानी लगातार होते रहे तो आवली के असंख्याते भाग तक, और बीच में अंतर पड़ जाए तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक, तो अंतर्मूर्त के अंदर फिर कोई ना कोई करेगा ही। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नहीं, अंतर में तो उनको भी ले लिया, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में तीनों विभक्ति स्थानों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये मार्गणा का अंतर बताया। आनंद स्वर्ग से लेकर नवग्रेविक तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर सात रात दिन है। यह उपशम सम्यक तो प्राप्ति का अंतर है। अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है, यानी अवस्थित तो हमेशा रहेगा।
सामान्य मनुष्य में, पर्याप्त मनुष्य में भी अल्पतर का अंतर खाली अंतर मूर्ति होगा,
नाना जीवों की अपेक्षा दिया है ना।
अच्छा, अंतर्मूर्त के पश्चात तो उसका कांडक
कोई ना कोई अन्य, कोई ना कोई अनुभाग कांडक वगैरह करेंगे। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अपराजित तक वर्ष पृथक्त्व, और सर्वार्थ सिद्धि में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। क्या कहते हैं? अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर अपराजित तक वर्ष पृथक्त्व, और सर्वार्थ सिद्धि में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, यानी वहां अल्पतर करने वाले कौन है?
क्रिया।
कौन सी क्रिया? क्योंकि सभी तो समय दृष्टि है,
विसंयोजना करेंगे
तो विसंयोजना करने वाले हो गए। तो अपराजित तक तो वर्ष पृथक्त्व बताया, और सर्वार्थ सिद्धि में पल्ले के असंख्यात, वहां जीव ही कम है ना, संख्यात ही जीव है, तो कोई कभी कभी करेगा तो उस अपेक्षा से लिए, क्योंकि एक बार करने के बाद वो दोबारा तो नहीं करेगा ना जी। हाँ, अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इस प्रकार अंतरानुगम को जानकर उसे अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ, भोग सेवा आदेश से सामान्य तिर्यंचों में तो तीनों ही विभक्ति वाले सर्वदा पाए जाते हैं, अतः अंतर नहीं। शेष गतियों में भुजगार और अवस्थित वाले सर्वदा पाए जाते हैं, अतः उनका अंतर नहीं है। किंतु मनुष्य अपर्याप्तकों में तीनों विभक्ति वालों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है, क्योंकि यह सांतर मार्गणा है और उसका जघन्य अंतर काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इस मार्गणा का ही ये अंतर है। नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है। अपन अल्पतर विभक्ति का अंतर सब नारकियों, सब पंचेन्द्र तीर्यंचों, तीन प्रकार के मनुष्यों, सामान्य देवों और भवनवासी से लेकर सहस्रार पर्यंत के देवों में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त होता है। अल्पतर का आनंद से लेकर सब ग्रहवेग तक के देवों में अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर सात दिन रात होता है, क्योंकि उनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के उत्कृष्ट हानि बतलाई है और प्रथम सम्यक्त्व का जघन्य अंतर काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर सात रात दिन बतलाया है, तथा अनुदिशा दिक में से अपराजित तक के देवों में अल्पतर अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व और सर्वार सिद्धि में पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। पल्ले के संख्यात विभाग लिखा है, यहाँ भी लिखा है और ऊपर असंख्यात विभाग लिखा था। नहीं, ऊपर संख्यात है, ऊपर संख्यात है। अनुदिशादि जाव सवठ सिद्धित्य अपदर जहने ने एक समय उक्कसेन वास पुदत्तम पलिदोमस संख्यज यदि भागो। ऊपर मूल में क्या लिखा है आपके में? संख्यात लिखा है कि असंख्यात लिखा है मूल में? ऊपर भी तो ऊपर जो हमने असंख्यात पढ़ा था ना, वहां संख्यात कर देना। विशेषार्थ में बराबर बताया, विशेषार्थ के ऊपर तीसरी लाइन, सर्वार सिद्धि में पल्ले के संख्यात्वे चाहिए। और उसके लिए रेफरेंस ऊपर है, नीचे से दूसरी लाइन में पलिदोमस संख्यज यदि भागो। तो ये काल बढ़ा के अभी कम हुआ? पल्ले का संख्यात्वा भाग बड़ा है क्या असंख्यात्वा भाग बड़ा है? संख्यात्वा भाग बड़ा है। जहाँ भागाकार की भाजक की संख्या बड़ी है तो वहाँ टोटल जो है रिजल्ट कम आता है। अभी संख्यात यानी यहाँ बढ़ गया, असंख्यात्वे भाग से संख्यात्वा भाग बड़ा है, भाजक छोटा हो गया ना। पहले असंख्यात से भाग दिया था, अभी संख्यात से भाग दिया तो रिजल्ट
रिवर्स हो गया।
हाँ, रिवर्स हुआ, बड़ा आया। ये अंतरानुगम हुआ। अब भावानुगम, ये नंबर 12। सबसे छोटा भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र उदयिक भाव है। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ। अब अल्प बहुत्वानुगम नंबर 13। हमने देखे ना 13 है, कहा था उन्होंने, यानी भुजगार अल्पतर और अवस्थित वाले नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ अल्प बहुत्व चलेगा। अल्प बहुत्वानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। उनमें से ओग से अल्पतर विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। भुजगार विभक्ति वाले उनसे असंख्यात गुणे हैं और अवस्थित विभक्ति वाले उनसे संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार चारों ही गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए। आनंद से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में अल्पतर विभक्ति वाले सबसे थोड़े हैं। अब यहाँ भुजगार वाले होते ही नहीं है, उनसे अवस्थित विभक्ति वाले असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर वाले एक समय होते हैं ना, और लगातार आएंगे तो पंते एट ए टाइम, एक समय की बात है यहाँ पर। और अवस्थित में संचय की अपेक्षा अंतर्मूर्त होते हैं। सर्वार सिद्धि में मुनि के अल्पतर विभक्ति वाले सबसे थोड़े हैं, और अवस्थित विभक्ति वाले उनसे संख्यात गुणे हैं, क्योंकि टोटल जीव ही संख्यात है। इस प्रकार अल्प भूतों को जानकर उसे अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इस प्रकार भुजगारानुगम समाप्त हुआ। ये भुजगार में 13 अनुयोग बताए, भुजगार विभक्ति है, भुजगार अल्पतर और अवस्थित में 13 अनुयोग द्वारा उनके द्वारा ये बात बताई। अब यहाँ ये नया शुरू हो जाएगा। अभी विषय पद निक्षेप, अब पद निक्षेप का कथन करते हैं। उनमें ये अनुयोग द्वार है, अभी इसके अनुयोग फिर अलग। समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। शंका, पद निक्षेप किसे कहते हैं? उसका समाधान, भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहते हैं। इसका अर्थ क्या समझे? हाँ लक्ष्मी बहन, कौन कहना चाहता है? हाँ, भुजगार विशेष किसको कहना है?
जो सत्ता पे कम अनुभाग वाले जीव, जो ज्यादा
हाँ।
सत्ता में कम अनुभाग वाला है
हाँ।
और ज्यादा अनुभाग बंद करता है
हाँ, हाँ।
उसको भुजगार विशेष कहते
हैं। भुजगार कहते हैं, भुजगार विशेष क्यों कहा? विशेष का अर्थ होता है डिफरेंस। हमने देखा चय को भी विशेष कहते हैं, ऐसा देखा था, विशेष है ना डिफरेंस। भुजगार विशेष का अर्थ होता है कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि का हानि हुई, वृद्धि हुई तो उसका जो प्रमाण होता है तो उसको विशेष कहेंगे। देखो भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहते हैं। यदि कहा जाए कि जब पद निक्षेप भुजगार का ही एक विशेष है तो उसके कथन करने से पुनरुक्त दोष आता है। जब पद निक्षेप भुजगार का ही विशेष है तो ये डबल हो गया, क्योंकि भुजगार का कथन पीछे कराए है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पद निक्षेप में जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि यानी जघन्य और उत्कृष्ट हानि, और अवस्थान यानी उत्कृष्ट वृद्धि के बाद अवस्थान होता है उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे, या उत्कृष्ट हानि होने के बाद अवस्थान होगा उसको भी उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? देखो वृद्धि थोड़ी भी होती है और ज्यादा भी होगी और ज्यादा भी होगी, यहाँ दो ही लेना है, एक जघन्य में जघन्य वृद्धि और मैक्सिमम वृद्धि, दो बातें ली। क्या कहा यहाँ? भुजगार का विशेष यानी भुजगार में जो अन्य अन्य भुजगार होगी ना, कोई थोड़ा ही अनुभाग बढ़ाएगा और कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कोई जघन्य में जघन्य बढ़ाएगा और कोई उत्कृष्ट में उत्कृष्ट डिफरेंस होगा, पहले से जो बढ़कर जो बांधा है उसने उसमें मैक्सिमम वृद्धि हो सकती है, उसकी बात यहाँ कहेंगे पद निक्षेप में। विशेषार्थ, यद्यपि पद निक्षेप भुजगार अनुगम का ही एक भेद है, फिर भी इसमें उससे अंतर है। भुजगार अनुगम में तो भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तियों का वर्णन है, और पद निक्षेप में उन विभक्तियों के कारण वृद्धि और हानि और अवस्थान का वर्णन है। देखो भुजगार होना यानी बढ़ना, परंतु कितनी बढ़ी, कितनी वृद्धि हुई, उसको यहाँ पद निक्षेप कहेंगे। अल्पतर होना यानी कम होना, कितना कम हुआ उसका प्रमाण क्या, उसको क्या कहेंगे यहाँ पद निक्षेप। तो हरेक के प्रमाण नहीं गिनेंगे हम, जघन्य में जघन्य और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट उसको देखेंगे। और अवस्थान का वर्णन है, देखो ऊपर भुजगार कहा पद निक्षेप में, उसको वृद्धि कहा। ऊपर अल्पतर कहा था, यहाँ उसी को हानि कहा। ऊपर अवस्थित कहा, इसको उसको अवस्थान कहा। विभक्तियों में अवस्थित विभक्ति और यहाँ अवस्थान कहा, कह दिया उसको। अब ये जो तीन उसके बताए हैं, पहले में पहले समुत्कीर्तनानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, उनमें से यहाँ उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है,
क्या उत्कृष्ट पे क्या लेना चाहिए,
मैक्सिमम बढ़ोतरी होना।
पर हमने तो अभी तक कोई ऐसे देखा ही नहीं है कि ये अनुभाग मिनिमम है और ये अनुभाग मैक्सिमम है।
हाँ, तो वो अभी बताएंगे, वही तो बता रहे हैं कि मोनी की उत्कृष्ट वृद्धि अभी तो होती है कि नहीं, इतना बताएंगे। हाँ। फिर स्वामित्व में बताएंगे किसके होती है, वैसे कहेंगे ना मिथ्या दृष्टि के होती है, वृद्धि किसके होगी,
मिथ्या दृष्टि।
हाँ, तो देखो अभी पढ़ेंगे। ओग से मोहनी कर्म की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और अवस्थान होता है, अर्थात मोहनी कर्म की उत्कृष्ट वृद्धि भी होती है, उत्कृष्ट हानि भी होती है। वो कब होती है वो आगे कहेंगे, या किसके होती है, और उत्कृष्ट अवस्थान भी होता करना, हीता हुआ। होता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होता है, उत्कृष्ट वृद्धि नहीं होती। जो उत्कृष्ट जब कहते हैं मार्गणा में, जब उत्कृष्ट कहेंगे तो उनके लिए अपने जो उत्कृष्ट होगा उसको उत्कृष्ट कहेंगे। मिथ्या दृष्टि को जितनी हानि हो सकती है, वहां तो सारे सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जब उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है, तो उसके हानि तो सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ बताएंगे कहाँ होती है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान को जानकर उसे अनाहारी तक ले जाना चाहिए। प्रत्येक मार्गणा में वो है, इतना ही बताना है हमको। और जहाँ वृद्धि नहीं होती उन मार्गणा में कहेंगे वो तो हानि की बात करेंगे वहां पर। इस प्रकार उत्कृष्ट समुत्कीर्तना समाप्त हुई। अब मैं पूछूं आहार का योग में क्या होता है, उत्कृष्ट वृद्धि होती है क्या, उत्कृष्ट हानि होती है क्या,
अवस्था नहीं
होता। नहीं, अवस्था नहीं रहता है। अभी उसको भी हम उत्कृष्ट जगने नहीं करेंगे, क्योंकि उस कायोग में जितना है उतना ही रहता है। इस तरह से हर एक मार्गणा में सोचना है। अब जघन्य से प्रयोजन है। जघन्य का प्रयोजन क्या है, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होता है। इस प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, ये सर्वत्र होगा। इतनी विशेषता है आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होता है, वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषार्थ, ओग की तरह आदेश से भी चारों गतियों में उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं, किंतु आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में न उत्कृष्ट वृद्धि होती है और न जघन्य वृद्धि, क्योंकि उनमें भुजगार का अभाव है। इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुगम समाप्त हुआ। उत्कृष्ट समुत्कीर्तना लिखा था न, यहाँ जगन्य भी समाप्त हुआ और समुत्कीर्तना अनुगम समाप्त हुआ। पहले उत्कृष्ट बताई, फिर जगन्य बताया, अभी समुत्कीर्तना अनुगम ही समाप्त हुआ यहाँ पर। क्यों आहारक में? आहारक में तो सभी घटित होगा, आहारक का योग, का योग में वहां तो नहीं घटित होगा। हाँ, अब स्वामित्व दो प्रकार का है, इसमें से पहला हमने समुत्कीर्तना देखा, इसमें तीन ही है ना, अभी दूसरा है वो स्वामित्व है। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अब यहाँ कहेंगे, पहले तो इतना ही बताया, समुत्कीर्तना में उत्कृष्ट वृद्धि होती है, अब किसके होती है वो यहाँ बताएंगे। ओघ से मोहनीय की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, ये वृद्धि की बात पहले ले रहे हैं। जो अपने योग्य जघन्य अनुभाग वाले सत्कर्म से उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है, और उसी के अनंतर समय में, अनंतर नेक्स्ट समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। यानी एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट बंध किया और दूसरे समय में
अवस्थान
उतना ही रहा, तो अवस्थान रहा उसका। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिस जीव के उत्कृष्ट अनुभाग वाले कर्मों की सत्ता है, वह जीव जब उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात करता है तो उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए।
ये उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि तो एक ही बार होगी ना?
हाँ, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पहली बार होगी ना, दोबारा हानि हो सकती है। तो पहला जो बड़ा अनुभव कांडक घात होगा उसमें उत्कृष्ट हानि होगी। अपने योग्य, ये अपने योग्य, क्योंकि मार्गणा में अपने अपने योग्य लेना ही चाहिए। अपने योग्य जघन्य अनुभाग वाला सत्कर्म, जैसे संगी पंचेंद्रिय में कोई आया है, एकेंद्रिय में से आया है, तो वो उसका योग्य, उसका जघन्य हो गया ना वहां पर, और फिर उसने बढ़ाकर बांधा है तो उत्कृष्ट वृद्धि हो गई उसकी। तो अपने योग्य क्यों कहा? नारके में जघन्य कितना होगा अनुभाग, जो असंगी में से आया हुआ, इसलिए उसके अपने योग्य। सर्वत्र एकेंद्रिय से नहीं आते हैं, इसलिए जहां जो अपने योग्य जितना होगा उससे बढ़कर बांधने वाला, उसको उत्कृष्ट वृद्धि कहेंगे।
और उत्कृष्ट वृद्धि के अनंत समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता ही है।
अवस्थान कब कहेंगे? अवस्थान यानी उतना का उतना रहना। थोड़ी वृद्धि करके अवस्थान होगा तो हमको उसको जघन्य अवस्थान कहेंगे, होता ही उसकी बात नहीं है। बढ़कर भुजगार लगातार अंतर्मूर्त तक भी चलेगा तो उसको हम अवस्थान कैसे कहेंगे? हमें अवस्थान देखना है।
नहीं, वृद्धि तो पहले समय में हो गई, पीछे अवस्थान ही हो गया ना।
अवस्थान होता ही है, ये बात नहीं। उत्कृष्ट अवस्थान कब कहलाएगा? उत्कृष्ट वृद्धि के बाद जो अवस्थान होगा उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। किसी जीव ने उत्कृष्ट वृद्धि की तो उसके अगर बढ़कर बांध ही नहीं कोई सकता है तो उतना ही रहेगा वो। ख्याल में आता है ना? हम अभी उत्कृष्ट की बात छोड़ेंगे, हम केवल भुजगार लेते हैं। कोई मीडियम उसने वृद्धि की तो हो सकता है कि दूसरे समय में और बढ़कर बांधा, और बढ़कर बांधा, और बढ़कर बांधा, परंतु जो एक समय से बढ़कर बांधा था उससे दूसरे समय में बढ़कर बांधा, तो वो वहां की वृद्धि थोड़ी हुई, ज्यादा नहीं हुई। तो उसके बाद अगर अवस्थान करता है तो उसको हम जघन्य अवस्थान कहेंगे।
नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी लाइन में बताया ना कि उत्कृष्ट वृद्धि के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है।
हाँ, तो उत्कृष्ट वृद्धि जिसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट वृद्धि के बाद हमने देखा था कोई उत्कृष्ट बंद भी करता है, उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला एक समय में तो जघन्य नहीं होता, लगातार अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट रहेगा, बाद में वो नियम से अल्पतर होगा, जघन्य होगा, यानी अनुत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होगा। तो अंतर्मूर्त तक तो उतना ही रहता है, तो उसको हम अवस्थान कहेंगे। देखो इसी प्रकार हम देख रहे थे, और हमने तिर्यंच अपर्याप्त को में हम आए थे ऊपर से 3, 3, 6, 7वीं लाइन। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जिसके अपने योग्य जघन्य अनुभाग की सत्ता वाले कर्मों का अस्तित्व है। यदि हम ये सूक्ष्म निगोद में से आया हुआ जीव लेंगे यहाँ पर, वह जब अपने योग्य, ये अपने योग्य दोनों जगह लाया, क्योंकि अपर्याप्त जीव संगी पर्याप्त के जैसा बंध नहीं करेंगे, तो अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिस मनुष्य, देखो ये ओघ में उत्कृष्ट हानि पूछ रहे हो, नहीं तो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में बता रहे हैं। ओघ में तो उत्कृष्ट हानि ऊपर बता चुके हो, उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात करने वाले। यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में ही उत्कृष्ट हानि बता रहे, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट हानि। जिस मनुष्य, मनुष्यनी अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले कर्मों का अस्तित्व है, वह उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात करता हुआ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उसके उत्कृष्ट हानि होती। ये बात ख्याल में आई? किसमें बात चल रही? उत्कृष्ट हानि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में। उत्कृष्ट हानि कब कहलाएगी? उसके योग्य मैक्सिमम अनुभाग के साथ इसमें आया है। तो कोई पंचेंद्रिय तिर्यंच लिया संगी या मनुष्य लिया पर्याप्त, क्यों? उन्होंने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया है और बाद में उन्होंने अनुभाग कांडक शुरू किया था, अब वो पंचेंद्रिय अपर्याप्त में आया, तो यहां आकर उसका अनुभाग कांडक पूर्ण हुआ तो उसके उत्कृष्ट हानि हो गई। और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अब यहाँ हानि ज्यादा है वृद्धि से, इसलिए उत्कृष्ट अवस्थान में हानि के बाद वाला लिया। इसी प्रकार अपर्याप्त मनुष्यों के जानना चाहिए। आनंद स्वर्ग से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला वाला करना बराबर। प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख, प्रथम सम्यक्त्व ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जो देव पहले अनुभाग कांडक का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। प्रायोगिक लब्धि में पहला जो अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात बड़ा होता है तभी की बात है यहाँ पर। और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मोह की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले। सबसे पहले आते ही पहला प्रोसेस वहाँ स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक एक ही बार होता है, एक ही होता है। हमने देखा ना प्रायोगिक अवधि में स्थिति कितनी बन जाती है, क्यों बनती है? एक बड़ा कांडक होता है तभी तो बनती है ना। प्रायोगिक अवधि में एक बड़ा कांडक घात होता है, एक ही बार होता है। बाद में जो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में अनुभाग कांडक घात होते हैं वो अपूर्व करण से होते हैं। हाँ, उस बार बार नहीं होते, एक बार होता है। देखो, अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले जिस वेदक समय दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन करते हुए प्रथम अनुभाग कांडक का घात कर दिया है, किया है, उसके उत्कृष्ट हानि होती है। ये हमने कल इसकी चर्चा की है। पहला अनुभाग कांडक है उसमें घात ज्यादा होगा, बाद में वो कांडक छोटे छोटे हो जाएंगे। उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है, इस प्रकार जानकर उत्कृष्ट वृद्धि आदि को, आदि यानी उत्कृष्ट वृद्धि हानि अवस्थान को अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ, ओग से अपने योग्य जघन्य अनुभाग सत्कर्म वाला जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। क्योंकि मैक्सिमम उसने बंद कर दिया है इसलिए वो अवस्थान ही होगा, आपने जैसा पूछा था। यानी मिनिमम से लेकर वो एकदम मैक्सिमम हुआ तो उसका उत्कृष्ट वृद्धि हो गई और उसके नेक्स्ट समय में उत्कृष्ट अवस्थान। तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उत्कृष्ट हानि होती है। नारकियों, चार प्रकार के तिर्यंचों, तीन प्रकार के मनुष्यों, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में कुछ अंतर है जो मूल में बतलाया ही है। विशेष बात यह है उनमें उत्कृष्ट हानि वाले के उत्कृष्ट अवस्थान बतलाया है। किसमें? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। इसका कारण यह है उनके उत्कृष्ट वृद्धि से उत्कृष्ट हानि का प्रमाण अधिक है। मैंने बात की थी ना, जितने वृद्धि में जितना बढ़ोतरी हो सकती है हानि में वो घटना उनका अधिक है। नहीं समझे? वृद्धि कब होगी? कोई एक केंद्रीय में से आया है तो वहां जितना अनुभाग है अब वो बढ़कर बांधेगा। किसके योग्य बांधेगा? पंचेंद्रिय अपर्याप्त के योग्य बांधेगा। अब जो हानि करने वाला है वो कहाँ से आया है? संगी पंचेंद्रियों में से उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आया है। अपर्याप्त में बढ़ाएगा तो भी संगी जितना बढ़ाएगा नहीं। अब वहां से आया है वो उत्कृष्ट के साथ।
पंचेंद्रियों में जो अनुभाग अपर्याप्त में जो अनुभाग है वो एकेंद्रीय अपेक्षा तो बहुत ज्यादा है।
इसीलिए तो वो ज्यादा होने पर भी वहां जितनी वृद्धि हुई है उससे वो जीव पंचेंद्रिय में ही है, उत्कृष्ट अनुभाग वाला है और वो वहीं पर पंचेंद्रिय संगी होते हुए ही उसने अनुभाग कांडक शुरू किया था बड़ा, और वो अभी अपर्याप्त में आया है तो उसका वो जो कांडक है वो बड़ा होगा। ये बात बताएं। हाँ, अनुभाग की बात, यानी जितना बढ़ाता है उससे हानि ज्यादा है, इतनी बात लेना। अभी तो हमें वृद्धि से उत्कृष्ट हानि बड़ी है, इसलिए उत्कृष्ट अवस्थान कब होगा? जो जो उत्कृष्ट होगा उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। यदि वृद्धि ज्यादा होती हानि से, तो उत्कृष्ट अवस्थान तो बढ़ने के बाद कहते। जैसे ओघ में उत्कृष्ट अवस्थान किसको कहा, अपने योग्य जघन्य था, अपने योग्य उत्कृष्ट कर दिया, और बाद में जो अवस्थान होता है उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहा था। अब तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त में हानि ज्यादा होती है, उसके बाद वाले अवस्थान को यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान कहा, जहां जो हानि वृद्धि होती उसके प्रमाण में लेना है। देखो इसका कारण यह है कि उनके ने तिर्यंच अपर्याप्त जो है पंचेंद्रिय या मनुष्य अपर्याप्त में उनके उत्कृष्ट वृद्धि से उत्कृष्ट हानि का प्रमाण अधिक है, और वृद्धि तथा हानि में से जिसका प्रमाण अधिक होता है उसी को लेकर उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार अनंत से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए।
तो यहाँ पे इसी लेना है कि जो पंचेंद्रिय संगी में उत्पन्न होता है, नहीं पंचेंद्रिय संगी उसका उत्कृष्ट अवस्थान उत्कृष्ट वृद्धि के बाद होता है, और यहाँ पे उत्कृष्ट अवस्थान उत्कृष्ट हानि
के बाद हुआ, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट वृद्धि, इनके लिए उत्कृष्ट वृद्धि से इनकी अपनी उत्कृष्ट हानि ज्यादा है। जो ज्यादा है उसके पश्चात वाले अवस्थान को हम उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। अब आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के तो उद्धि वृद्धि होती ही नहीं है, तो वहां की जो उत्कृष्ट हानि है उसके पश्चात उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे, यानी क्या ना, उनमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हानि ही होती है, और उत्कृष्ट हानि वाले के ही उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। अब जघन्य से प्रयोजन है,
यहाँ पे जो निषेध की अपेक्षा हम लोग को जो क्लैरिटी मिलती है उसमें ये यहाँ पे नहीं मिलती है,
क्योंकि हम निषेध की अपेक्षा ही विचार करने के बहुत,
निषेध की अपेक्षा विचार नहीं करते ना, तो भी जो अनुभाग की अपेक्षा सोचते ना, तो भी उत्कृष्ट अनुभाग और अनुत्कृष्ट अनुभाग उसमें एकदम क्लैरिटी नहीं मिलती है,
ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि अभी तो हम शुरू किया ना पुस्तक, अंत तक क्लैरिटी बढ़ती जाएगी अपने। अभी तो मूल प्रकृति में देख रहे हैं, उत्तर प्रकृति में और बात आएगी और तकलीफ होगी। देखो अभी जघन्य में लेंगे, जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान। निषेकों में इसलिए आसान लगता था कि वहाँ एक ही निषेक की वृद्धि है, असंख्यात भाग है कि असंख्यात भाग, वो तो हमें वी कूड इमेजिन दैट, यहाँ कहाँ कितना होता है ये ख्याल में नहीं आता है, ख्याल है। जघन्य से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान किसके होता है, जो अन्यतर जीव, अन्यतर का अर्थ होता है कोई भी जीव, अनंत वे भाग अधिक अनुभाग का बंद करता है, उसके जघन्य वृद्धि होती है। और कांडक घात के द्वारा उसी अनंत वे भाग अनुभाग का घात कर दिए जाने पर जघन्य हानि होती है। तथा इन दोनों वृद्धि हानियों में से किसी एक स्थान में जघन्य अवस्थान होता है। अब यहाँ दोनों में लिया अवस्थान, क्योंकि जघन्य जितनी वृद्धि उतनी जघन्य हानि होने से वो कहीं पर भी अवस्थान लागू होता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। कुछ विशेषता इस प्रकार है, आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जघन्य हानि किसके होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन करने वाला अन्यतर वेदक सम्यक दृष्टि देव जब अंतिम अनुभाग कांडक का घात कर देता है, अंतिम लिया ना, तब उसके जघन्य हानि होती है, क्योंकि अभी कांडक छोटा है। कांडक का अर्थ होता है नंबर ऑफ स्पर्धक उसमें कम हो गए। पहला अनुभाग कांडक घात होता है, उसमें नंबर ऑफ स्पर्धक ज्यादा है, उतने स्पर्धकों का अभाव हो जाता है। अब यहाँ नंबर जितने अनुभाग कांडक बीत गए तो बाद में जितना अनुभाग है उससे जो कांडक का प्रमाण होगा वो छोटा होता चला जाएगा, इसलिए वहां हानि कम हुई कहेंगे। और उसी के अनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है, इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण, ओग से जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि का प्रमाण समान है, ये बताएं। नेचुरली जैसे हम निषेकों में देखते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए, जहां स्थिति ज्यादा है वहां स्थिति कांडक का आयाम है वो लंबा है, अनेक स्थितियों का घात होता है। जितनी स्थिति कम होगी उस प्रमाण में कांडक भी छोटे छोटे होते चले जाएंगे। अब यहाँ स्पर्धकों में घटित करना है, स्पर्धक तो अनंत होते हैं, तो जहां मैक्सिमम स्पर्धकों का अभाव होकर कांडक घात होता है वहां वो कांडक का प्रमाण बड़ा है, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट हानि। कांडक घात एक एक अंतर्मूर्त में एक एक अनुभाग कांडक घात होते चले जाते हैं, संख्यात हजार होते हैं ना। अब जो अंतिम अनुभाग कांडक घात हुआ तो वहां हानि कम हुई, क्योंकि वहां कांडक का आयाम जो कहेंगे स्पर्धकों की भाषा में, समयों में नहीं, तो उसमें कम स्पर्धक हो गए तो हानि भी कम हुई वहां पर। तो यहां तो कहते हैं ओग में जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि का प्रमाण समान है, अतः जघन्य वृद्धि वाले के भी जघन्य अवस्थान होता है और जघन्य हानि वाले के भी जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में हानि ही होती है, अतः जघन्य हानि वाले के ही जघन्य अवस्थान होता है, वृद्धि होती नहीं तो अवस्थान हानि वाले के ही होगी। तथा उत्कृष्ट स्वामित्व के कथन में अनुदिशादिक में प्रथम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उत्कृष्ट हानि बतलाई थी। और यहां चरम यानी लास्ट अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर जघन्य हानि बतलाई है। इसका कारण यह है कि चरम अनुभाग कांडक से प्रथम अनुभाग कांडक में बहुत अधिक अनुभाग की सत्ता होती है। अनुभाग कितना कम होगा ये बात यहाँ ले, वहां अनुभाग की सत्ता मैक्सिमम है, ज्यादा है, और यहाँ कम है। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। देखो यहाँ दोनों मिलकर स्वामित्व अनुगम यहाँ समाप्त हुआ, यह अलग से नहीं लिखा कि जघन्य समाप्त हुआ। अब ये तीसरा इसमें से अल्प बहुत्व अनुगम है, वो दो प्रकार का है अल्प बहुत्व। ये पद निक्षेप में से तीसरा अनुयोग चल रहा है। कौन सा? हाँ, चारों गति में जहां जो कांडक घात होता है अपने अपने योग्य होगा वहां पर, क्योंकि अभी सर्व ऊपर जो जाने वाले हैं वेदक समय दृष्टि अलग अलग अनुभाग के साथ आए हुए जीव है ना, वहां पर उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वेदक समय तो प्राप्त करता है और वो हाँ ऐसे चार गति में भी ना कंपैरिजन नहीं किए।
ये उत्कृष्ट हानि हमने लिया वो सपना में जो चारित्रमों की सपना करते हैं उसको उत्कृष्ट हानि बतलाई जा सकती है कि क्रिया में होगी?
हाँ, चारित्रमों की सपना में इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो प्रति समय अनुभाग घटता है।
हाँ, वो तो अनंत
और यहाँ कांडक है। हाँ, कांडक में भी अनंत गुणा वाला अनंत बहुभाग ही घटता है। कांडक में भी अनंत बहुभाग घटता है, अनंतवा भाग रह जाता है, परंतु उसमें भी छोटे बड़े कांडक है सर्वत्र, कांडक में ऐसा ही, अनुभाग कांडक में ऐसा ही है सर्वत्र। इसलिए पहला कांडक और अंतिम कांडक बताया, कांडक के बाद प्रति समय घटने वाले को यहाँ नहीं लिया उत्कृष्ट हानि में, या जगन्य भी हानि में नहीं लिया, दोनों ओर नहीं लिया उसको, देखो ना। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। अल्प बहुत्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट हुआ, उत्कृष्ट करना, क्रू करना, क्रू कृष्ण जैसा। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। अभी हानि ज्यादा है क्या वृद्धि ज्यादा है उसकी यहाँ अल्पभूत्व लगाएंगे। ओघ से मोहनी की उत्कृष्ट हानि सब सब सबसे सबसे थोड़ी है, ये सब निकाल देना, सबसे थोड़ी है। अल्पभूत्व ना पहले कम जो है उसको बताएंगे। मुनि की उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है, उससे वृद्धि और अवस्थान दोनों समान होकर कुछ अधिक है। ओघ में हानि से वृद्धि ज्यादा है, इसलिए वृद्धि के बाद अवस्थान को उत्कृष्ट अवस्थान कहा था ओघ में। और अभी हम तिर्यंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त में हानि ज्यादा देखे थे, है ना, ओग में वृद्धि ज्यादा है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, कौन सी हानि कम है और वृद्धि ज्यादा है, सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में उत्कृष्ट वृद्धि थोड़ी है, सबसे थोड़ी है, उससे हानि और अवस्थान दोनों समान होकर अनंत गुणे हैं। ये अनुभाग में अनंत गुणा का डिफरेंस है, यानी जितनी वृद्धि है उससे भी अनंत गुणा हानि है, थोड़ी ज्यादा नहीं है। आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत हानि और अवस्थान दोनों समान है, क्योंकि हानि के पश्चात वाला ही वो अवस्थान कहा है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषत ओग से जीव के जो उत्कृष्ट हानि होती है उसका प्रमाण सबसे कम है, उसके उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान का प्रमाण अधिक है, किंतु परस्पर में दोनों का बराबर है, क्योंकि स्वामित्व अनुगम में जिसके उत्कृष्ट वृद्धि बतलाई है उसी के उत्कृष्ट अवस्थान भी बतलाया है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में उत्कृष्ट वृद्धि का परिमाण कम है और उत्कृष्ट हानि का प्रमाण वृद्धि से अधिक है, तथा अनतादिक में वृद्धि तो होती नहीं, अतः उत्कृष्ट हानि वाले के ही उत्कृष्ट अवस्थान होने से दोनों का परिमाण समान कहा। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्प बहुत्व अनुगम समाप्त हुआ। ये पद निक्षेप में हमने देखे तीन, अब जघन्य से उत्कृष्ट अल्पभूत हुआ। हाँ, अब जघन्य से प्रयोजन है, यानी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान। यहाँ तो हमने देखा था जघन्य में समान ही है, तो यहाँ समान ही कहेंगे, और अवस्थान किसी के भी होता है। तो जघन्य से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओवसे मोनिय की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों समान है, यानी जघन्य में अल्प बहुत्व नहीं लगेगा, क्योंकि हमने देखा था ना जितनी वृद्धि होती है उतनी हानि होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जघन्य हानि और अवस्थान दोनों समान है, इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण, ओव से जीव के जितनी जघन्य वृद्धि होती है उतनी ही जघन्य हानि भी होती है, अतः तीनों का परिमाण समान कहा, कमती बढ़ती नहीं कहा। इसी प्रकार चारों गतियों में भी जानना चाहिए, किंतु आनतादिक में वृद्धि नहीं होती वहां हानि और अवस्थान का प्रमाण समान कहा। इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। यहां तो वृद्धि हानि और अवस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट में बताया, अब वृद्धि विभक्ति नाम का अधिकार यहां शुरू हो जाएगा। अब वृद्धि विभक्ति का कथन करते हैं, उसमें समुत्कीर्तना से लेकर तरेग्या अल्प बहुतो पर्यंत 13 अनुयोग द्वार होते हैं। शंका, वृद्धि किसे कहते हैं? अब कहते हैं पदनिक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। पदनिक्षेप किसको कहा था? भुजगार विशेष को पदनिक्षेप कहा था। अब पदनिक्षेप विशेष को वृद्धि कहेंगे। ऐसा होने पर भी वृद्धि का कथन करने में पुनरुक्त दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वत्र सामान्य कथन से विशेष कथन पृथक उपलब्ध होता है। विशेषार्थ, जैसे भुजगार विभक्ति का ही एक विशेष पदनिक्षेप है, वैसे ही पदनिक्षेप का एक विशेष वृद्धि विभक्ति है। विशेष का विशेष है। पदनिक्षेप में मोनिय के अनुभाग सत्व में उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि, उत्कृष्ट और जघन्य हानि तथा उत्कृष्ट और जघन्य अवस्थान का कथन किया है, किंतु वृद्धि विभक्ति में अब ये वृद्धि हुई तो कितनी हुई? वहां तो जघन्य और उत्कृष्ट इतनी बताए थे, यहाँ जितनी कोई भी वृद्धि होगी तो उसका प्रमाण क्या है? तो कहेंगे वृद्धि विभक्ति में 6 प्रकार की वृद्धि, ये सुने हैं 6 प्रकार कभी? अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनंत गुण। और निषेकों में कितनी वृद्धि हानि देखी थी? उसमें अनंत नहीं हो सकते, वहां 5 भी देखी थी। किस? नहीं नहीं, असंख्यात गुणा वाली देखी था। किस में देखी? सम्यक तो सम्यक मिथ्या, असंख्य गुणा वृद्धि में पूछ रही हूँ, असंख्यात गुणा हानि भी थी वहां पर, वो दुरापकृष्टि में देखी। तो यहाँ तो अनुभाग में अनंत होते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, अनुभाग तो अनंतों में होते हैं, स्पर्धक भी अनंत, वर्गणाएं भी अनंत अनंत होती है। तो यहाँ तो 6 वृद्धि 6 हानि होगी, तो 6 प्रकार की वृद्धि 6 प्रकार की हानि और अवस्थान का कथन किया है। हाँ, जितनी वृद्धि होने के बाद अवस्थान होगा उसको उसका अवस्था, जैसे उत्कृष्ट वृद्धि के बाद उत्कृष्ट अवस्थान का, तो जितनी वृद्धि होके अवस्थान हुआ उसको भी। सारांश है कि पदनिक्षेप में वृद्धि आदि का सामान्य रूप से कथन है, यानी उत्कृष्ट हुआ के जघन्य हुआ इतना ही बताया था, अब हुआ तो कितना हुआ ये इसमें बताएंगे। और वृद्धि विभक्ति में वृद्धि और हानि के 6-6 भेदों को लेकर कथन किया है, वे भेद हैं अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इसी प्रकार हानि के भी छह भेद होते हैं तथा इनके बाद होने वाले अवस्थान का भी इसमें विचार किया गया है और इसमें 13 अनुयोग द्वार बताए। वृद्धि विभक्ति के 13, उनमें से समुत्कीर्तन अनुगम से एक नंबर का वृद्धि वाला, वृद्धि विभक्ति वाला नंबर एक। ओग और आदेश, ओग से मोनी कर्म की छह वृद्धियां, छह हानियां और अवस्थान होते हैं, पर होते हैं बता दिया ना, तो ये होगी समुत्कीर्तना। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनंत गुण हानि और अवस्थान होता है।
इस प्रकार
एक ही हानि बताएं। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, क्योंकि वहां कांडक घात होते ना, अनंत गुण हानि होते हैं। ओग की तरह चारों गतियों में भी मोनिय के अनुभाग की छह वृद्धियां, छह हानियां और अवस्थान होते हैं, किंतु आनतादिक में केवल अनंत गुण हानि और अवस्थान ही होते हैं। इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुगम समाप्त हुआ। अब वृद्धि विशेष का ही 2 नंबर का अनुयोग चलेगा, स्वामित्व अनुगम, यानी वो किसके होती है वो अभी बताएंगे। वहां 6 प्रकार की होती इतना ही बताया, अब वो किसके होती है वो यहां बताएंगे। ओग और आदेश, स्वामित्व अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोनी की 6 वृद्धियां और 5 हानियां किसके होती हैं? किसी एक मिथ्या दृष्टि जीव के होती हैं।
यह 5 हानि में किसको छोड़ा?
अनंत गुण हानि।
तो वो तो अनंत आदि में भी अनंत गुण हानि तो होती है, तो वो मिथ्या दृष्टि को भी होती होगी।
हाँ, उसके भी होती है।
तो यहाँ पे इसको लेना है कि नहीं लेना है?
अनंत गुण हानि में समय दृष्टि भी लेना। 5 हानियों तो एकमात्र मिथ्या दृष्टि के हैं और अनंत गुण हानि में समय दृष्टि को लेना। देखो ना आगे वाला, अनंत गुण हानि और अवस्थिति किसके होती है? अन्यतर समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है, यानी मिथ्या दृष्टि में भी अनंत गुण हानि तो होती है, मिथ्या दृष्टि में तो सभी है। देखो वृद्धियां किसमें होगी, पहले ये देखो कितनी भी वृद्धि किसमें होगी, मिथ्या दृष्टि के होते। हानि किसको होती है? समय दृष्टि के भी होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है, ये बात है ना। अब 6 प्रकार की हानियां किसके होगी? मिथ्या दृष्टि के। और समय दृष्टि में हानि तो होती है, कैसी होगी? अनंत गुण हानि होगी। हाँ, अनंत गुण हानि होती है। क्या हाँ, क्या होता है? वो निर्जरा में प्रदेशों की हानि वृद्धि है, असंख्यात गुणा निर्जरा होती है ना, वो किसकी किस में होती है? प्रदेशों की संख्या में संख्या बढ़ती है। यहाँ अनुभाग की हानि चल रही है, अनंत गुण हानि। देखो ना, अनंत गुण हानि और अवस्थिति किसके होती है? अन्यतर समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में कथन करना चाहिए, किंतु कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में 6 वृद्धियां, 6 हानियां और अवस्थिति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि के होती है। आनंद से लेकर 9 ग्रहवेग पर्यंत अनंत गुण हानि और अवस्थिति किसके होती है? किसी भी समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है। और अनुदिश से लेकर सर्वार्थ, सर्वार्थ बराबर करना, सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनंत गुणहानि और अवस्थान किसके होते हैं? अब वहाँ तो कोई मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है, तो कहते किसी भी समय दृष्टि के होते हैं। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ओग से मुनि के अनुभाग सत्कर्म में छहों वृद्धि और पांचों हानियां मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, किंतु अनंत गुणहानि और अवस्थान सम्यक दृष्टि के भी है ना, होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि में तो सब कुछ पॉसिबल है और सम्यक दृष्टि में अनंत गुणहानि होगी। आदेश से चारों गतियों में भी यही व्यवस्था है। मिथ्या दृष्टि के छह हानियां होती है और सम्यक दृष्टि के एक अनंत गुणहानि ही होगी। कांडघात होते हैं, किंतु पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त चूंकि मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, अतः उनमें मिथ्या दृष्टि के ही सब वृद्धियां सब हानियां और अवस्थान होते हैं। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया। तथा अनंतादिक में अनंत गुणहानि और अवस्थान ही होते हैं, और अनंत से लेकर नव ग्रवेक पर्यंत मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, अतः अनंत गुणहानि और अवस्थान दोनों के ही होते हैं। यानी अनंत से लेकर ऊपर के जो नव ग्रवेक पर्यंत मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उनमें भी अनंत गुणहानि ही पाई जाएगी, किंतु अनुदिशादिक में सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, अतः अनंत गुणहानि और अवस्थान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। ये दो अनुगम हुए ना इसमें से, हाँ अभी कालानुगम तीसरा, वृद्धि विशेष का तीसरा। कालानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से एक जीव के मुनि की पांचों वृद्धियों का कितना काल है? वृद्धियों का काल है लगातार एक समय दो समय तीन समय वृद्धि करते जाए तो कहते जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है।
एक जीव की अपेक्षा,
हाँ, हमने भुजगार का कितना देखा था? अंतर्मूर्त देखा था। अब यहाँ किसी विशिष्ट वृद्धि का काल लेना है, हाँ अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त यहाँ आ जाएगा, आ गया। पांच हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल
की अपेक्षा अनंत गुण हानि का अंतर्मूर्त कैसे होगा?
लगातार होता रहेगा, वही लेना है। अच्छा, अंतर्मूर्त तक लगातार
सपना में
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त हानि में, वृद्धि भी बताई ना उतनी
नहीं, हानि में ये सपना में लेने का ना,
हाँ अंतर्मूर्त काल तक सपना में ले। पांच हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, देखो पांच हानियों में तो एक ही समय लिया। अवस्थिति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक 163 सागर है, हमने देखा था ना, हाँ कि पल्ले भूभूमि में पल्ले के असंख्यात वे भाग पहले औपशमिक सम्यक किया तो हानि की और बाद में अवस्थित कर दिया, फिर भी 66 सागर और 31 सागर। अब ये आदेश की बात कल पढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। दोषी सा।